आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से 27वां अध्याय से 18वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा बुद्धे तथा बुद्धेः परस्य च यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपारसश्च यथा तथा बुद्धे परस्य च यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। यथा गंधस्य भूमेश्च भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। न भावो व्यतिरेकतः माता जी बोली यथा गंधस्य भूमेश्च अपारो व्यतिरेकतः च यथा तथा बुद्धे परस्य च। यथा जिस तरह गंधस्य गंध का भूमे है पृथ्वी की च तथा न नहीं भाव अस्तित्व व्यतिरेकतः पृथक यानी अलग अलग अपाम जल का रसस्य स्वाद का च सॉरी रसस्य स्वाद का च तथा यथा जिस तरह तथा उसी तरह बुद्धे है बुद्धि का परस्य चेतना या आत्मा का च तथा जिस प्रकार पृथ्वी तथा इसकी गंध एक बात हुई। दूसरा जल या उसके स्वाद का कोई अलग अलग अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार बुद्धि तथा चेतना का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। तात्पर्य में लिखा है यहाँ उदाहरण दिया गया है कि किसी भी भौतिक वस्तु में गंध होती है पृथ्वी फूल सभी में गंध होती है। यदि पदार्थ में से गंध को अलग कर दिया जाए तो पदार्थ की पहचान समाप्त हो जाती है। यदि जल में स्वाद न हो तो वो जल व्यर्थ है। यदि अग्नि में उष्णता न हो तो वो अग्नि व्यर्थ है। उसी प्रकार से बुद्धि नहीं हो तो आत्मा का कोई अर्थ नहीं होता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो इस स्कंद में भगवान कपिल देव अपनी माता देवावती के साथ संवाद कर रहे हैं और ये बहुत ही अद्भुत अद्वितीय और दिव्य घटना है जिसमें जिस पुत्र को जन्म दिया है उसी पुत्र को गुरु मानकर माता उसके निचले स्थल पर बैठकर आध्यात्मिक संवाद हो रहा है। इसी से इस प्रकरण की दिव्यता शुरू होती है। साधारण तौर पर जो जन्म से श्रेष्ठ होता है उसी का लोग सुनते हैं और उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, जो अनुभवी हैं साक्षात्कारी हैं और भौतिक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, जैसे उम्र से श्रेष्ठ हैं या विद्या से श्रेष्ठ हैं या पद से श्रेष्ठ हैं या जन्म से श्रेष्ठ हैं या कुल से श्रेष्ठ हैं, इनसे इस भौतिक विश्व में सुना जाता है। लेकिन जब भी दिव्यता निर्माण होती है या दिव्यता होती है उस समय ये सारे नियम टूट जाते हैं। साधारण स्थिति में माता बालक को कहती है, तुझे मैंने जन्म दिया है, तू मुझे क्या सिखाएगा, तुझे मैंने दिन रात साफ किया है। लेकिन उसी बालक के साथ अगर हमें आध्यात्मिक विद्या सीखनी है तो उसके लिए चरम नम्रता की आवश्यकता है और ऐसे नम्रता के बिना आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होता है। अगर वो माता ही माता पुत्र से भी नहीं सुन रही है, पुत्र माता से सुन रहा है या पुत्र पिता से सुन रहा है, ये नॉर्मल है। इसमें भी श्रोता के चेतना में अगर नम्रता है तो ही आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। साधारण स्थिति में भी अगर नम्रता नहीं होगी तो श्रेष्ठतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है फिर भी वो प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि नम्रता वो भाव है, नम्रता की वो स्थिति है जो दिव्य ज्ञान के साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक है। पूरे श्रीमद् भागवत का जो कथन है वो इसी तत्व पर आधारित है। सुखदेव जी भी देखा जाए तो 16 साल के बालक हैं और राजा परीक्षित पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हैं, आयु से बड़े हैं, कुल से भी श्रेष्ठ हैं। और उससे भी बड़ी विशेष बात यह है कि उसमें सुखदेव जी के पिताजी भी बैठे हैं जिनके द्वारा सुखदेव जी ने स्वयं भागवत का अध्ययन किया है। वो व्यासदेव जी भी बैठे हैं और व्यासदेव जी के गुरु महाराज नारद मुनि जिनसे उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वो भी वहाँ बैठे हैं। तो अगर वो कहते हैं कि ठीक है अभी मेरा पोता मेरा बालक कथा कर रहा है तो मैं जाता हूँ, उसको भी संकोच नहीं होना चाहिए जब मैं बोल रहा हूँ बैठा हूँ, लेकिन वो सब लोग बैठे और यहाँ तक कि उसमें कई ऐसे मुनि थे जो हजारों लाखों वर्ष के आयु के थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो योग्यता होती है वो किसी भी भौतिक स्तर पर आधारित नहीं होती है, कुल विद्या पद अधिकार इसके ऊपर वो निर्भर नहीं होती है। आध्यात्मिक साक्षात्कार ये बिल्कुल विश्व के किसी भी नियम के परे है, वो दिव्य है। देखते हैं ना अभी आजकल के ज़माने में तो 10 साल की लड़की, 10 साल का बालक भी भागवत कथा कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे आचार्यों को जानता हूँ कि पिताजी के गोद में बैठकर 7 साल में कथा करते थे, मेरा परिचय है उनसे, क्योंकि वो पूर्व जन्म की जो सुकृति है, पूर्व जन्म में जितना भी आध्यात्मिक प्रगति की है, हो सकता है पिताजी से भी अधिक उन्नत होंगे वो, और योग भ्रष्ट होने के नाते बचा हुआ जो आध्यात्मिक उन्नति का कार्य है वो पूरा करने के लिए इसमें आए हों, और पिताजी से 50 गुना अधिक आध्यात्मिक साक्षात्कार में आगे हो। तो ये भौतिक विश्व का जो जन्म होता है या यहाँ की जो स्थिति होती है, एक कन्वीनियंस है, एक सुविधा है जिससे हम अपने आगे की प्रगति कर सके। लेकिन कभी भी हम जब शास्त्र का श्रवण करने के बैठते हैं तो शास्त्र का श्रवण करते एक समय वक्ता जो है वो मुझसे सीनियर है कि मुझसे जूनियर है, अरे ये तो मेरे सामने आया था, मैंने तो इसको प्रचार किया था, ऐसे सोचना बहुत गलत है। क्योंकि ये जो आसन है इसको व्यासासन कहते हैं, व्यासपीठ कहते हैं, ये वास्तव में हमारा आसन नहीं है, ये व्यासदेव का आसन है, और इसमें केवल बैठकर व्यासदेव जी को बोलने का अधिकार है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो वो व्यासदेव की कृपा है और व्यासदेव के प्रतिनिधि के रूप में बोलना है, और जितनी श्रोताओं में इस बात पर श्रद्धा है और जितने वक्ता को भी इस बात पर श्रद्धा है उतना ही व्यासदेव उस वक्ता के माध्यम से बोलते हैं। ये मेरा मराठी में कहते हैं ना ठाम विश्वास, यानी ठोस विश्वास है इस बात का, क्योंकि इस आसन पर बैठने के बाद कभी कभी हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी, ना कभी उसका नोट्स बनाया था, ना कभी पढ़ाई की थी या कभी सोचा था कि बोलेंगे, तो तब समझ में आता है कि वक्ता मैं नहीं हूँ, वक्ता हम नहीं हैं, वक्ता व्यासदेव ही हैं, और व्यासदेव के मुख से कौन बोलते हैं, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण बोलते हैं। तो ये परंपरा ही ऐसे चली आ रही है और सब परंपरा के वक्ताओं को आचार्यों को ये साक्षात्कार होता है और पता होना चाहिए कि बोलने वाले श्री हरि होते हैं, और वक्ता के मुख से क्या निकलता है, श्रोताओं की जो मुमुक्षुता है, जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, जो प्रश्न है, उसी प्रकार से वक्ता के मुख से बातें निकलती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव है कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करके, बहुत जोरदार मेरे हिसाब से प्रवचन की तैयारी करके जाता हूँ और उसमें से कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, कई बार ऐसे हुए, शुरुआत तक नहीं कर पाता हूँ, प्रस्तावना में ही पूरा समाप्त होता है काल। अभी अभी भी ऐसे अनुभव हुआ था, क्योंकि श्रोताओं का जो वर्ग है उनकी जो चेतना है उसी के अनुसार वक्ता के मुख से बातें निकलती हैं, और ये त्रिकालाबादी सत्य है। इसलिए कभी भी हम कहते हैं ना कि नष्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, ये सब मंत्र बोलते हैं, इसका कारण ये है कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ, व्यासदेव जी बोलेंगे, सुखदेव जी बोलेंगे, गुरु महाराज बोलेंगे, श्री कृष्ण भगवान बोलेंगे, इसलिए उन्हीं की कृपा लेकर, उन्हीं की कृपा याचना करते हुए ये प्रवचन को आरंभ करते हैं। क्योंकि जीव कितना भी प्रयास करेगा तो भी श्रीमद् भागवत की और भगवान की परिपूर्णता को नहीं पहुंच सकता। ये श्रीमद् भागवत भगवत वाणी है और बोलने वाले सुखदेव जी हैं और सीखा है व्यासदेव से, और ये शास्त्र श्रीवत श्री कृष्ण भगवान के मुख से आया हुआ है, ब्रह्मा जी के हृदय से, नारद मुनि के मन में, वहाँ से व्यासदेव जी के पास, वहाँ से सुखदेव जी के पास, और परंपरा में हमारे तक पहुँच रहा है। हम केवल प्रयत्न कर रहे हैं यथावत उसे कहने का, लेकिन जैसे हृदय की शुद्धि होती है उसी हद तक, सीमा तक व्यक्ति बोल सकता है। जितनी हमारी हृदय की शुद्धि नहीं है उसके परे हम नहीं बोल सकते, या जितना हमें अनुभव नहीं है वो नहीं बोल सकते, जितना अनुभव है उतना ही बोल सकते। इसलिए जब कथा होती है तो कथाकार को ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे श्रोताओं के सब प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए, कभी कभी नहीं आता है, तो उस समय कथाकार को प्रामाणिकता से बताना चाहिए कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मैं अभ्यास करूँगा या वरिष्ठों से पूछूँगा और उत्तर देने का प्रयास करूँगा, क्योंकि तो पूर्ण प्रश्न और पूर्ण परिपूर्ण उत्तर तो केवल संपूर्ण साक्षात्कारी जीव ही दे सकता है, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त। और बाकी हम जैसे लोग तो प्रयास कर रहे हैं, केवल कोशिश प्रयत्न कर रहे हैं कि इस विचारधारा से, इस दिव्य आध्यात्मिक विचारधारा से एक रूप होने का प्रयास कर रहे हैं, पैरेलल कम से कम साथ साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, प्रयास हो रहा है, सहज नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है, फिर भी जीवन में अन्य समय पर जैसे प्रवचन नहीं हो रहा है तब अन्य समय पर यह प्रयास कर होता रहता है कि इसी मार्ग में लगे रहे एक रूप होकर। तो देवाहूति नीचे बैठी हुई है माता जी, और कपिल देव जी भगवान व्यासासन पर बैठे हुए हैं। जब भी हम कोई भागवत का प्रसंग सुनते हैं ना तो उसमें संवाद होता है, और किसी किसी का संवाद कोई कह रहा है, और वो जो कोई कह रहा है वो सुखदेव जी बता रहे हैं कि मैत्रेय जी बोल रहे हैं, और मैत्रेय जी फिर ये दोनों का संवाद का वर्णन कर रहे हैं। तो हर समय एक प्रसंग होता है, एक स्थिति होती है जिनको जिसके बारे में श्रोताओं को पूर्ण अवगत होना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी कपिल देव जी व्यासासन पर बैठे हैं और माता जी नीचे बैठकर उनको प्रश्न कर रही है, और इसी बैकग्राउंड के साथ, पार्श्वभूमि के साथ हमें कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। जितना प्रसंग से हम एक रूप होंगे भाव से, उतना उनको जो कहना है यानी कपिल देव जी को जो कहना है वो हमारे समझ में आने की संभावना है, और जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना वही बात जो पहले सुनी थी वो हमको ज़्यादा समझ में आएगी। यही श्रीमद् भागवत का सत्य है। ये अभी 10वां स्कंद पूरा हो जाएगा तो फिर कभी एक बार 10 साल के बाद में यही प्रसंग वापस आएगा, और कोई और वक्ता उसमें बोलते रहेंगे, आप ही शायद उसमें सुनने के लिए बैठे होंगे। 10 साल में आपने बहुत सारी साधना की है, आपने कई सारे दिव्य अनुभव लिए हुए हैं, आपको कुछ ठोस ऐसे अनुभव हुए हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, और उस अधिक उन्नत स्थिति में आप भागवत सुन रहे हैं उसी बात को, तो आपको पहले से बहुत ज़्यादा अनुभूति प्राप्त होगी उसी श्लोक से। इसलिए तद्रूप होना बहुत ज़रूरी है, एक रूप होना बहुत ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा का ये जो नियम है वो इसीलिए बनाया है क्योंकि ये शास्त्र जो है वो इतना पावरफुल है कि हम लोग कितने भी पतित होंगे ना और इसका एक श्लोक रोज सुनेंगे, अर्थ समझ में आएगा अच्छा है, नहीं समझ में आया तो तात्पर्य में दिया है सब कुछ, जो भी आपको हमारे लिए आवश्यक है वो प्रभुपाद ने उस समय चिंतनशील भावना से लिखा हुआ है। एकाग्र होकर रात के समय पर हमारे सबके जन सामान्य के आध्यात्मिक हित और कल्याण के बारे में दीर्घ और गहरा चिंतन करते हुए ये सब लिखा हुआ है। तो इसके कारण ये कोई पंडित ने अनुवाद करके तात्पर्य नहीं लिखा है, ये कोई फिलोसॉफिकल पांडित्य का तात्पर्य नहीं है, ये भक्ति का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में ये विशेषता है, कभी कभी श्लोक में कुछ लिखा है और तात्पर्य में कुछ और भी प्रभुपाद कहते हैं, इसमें विसंगति नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें केवल एक ही बात है कि जीव के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है वही वो कह रहे हैं, भक्ति के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर नहीं, कर्म फल के स्तर पर नहीं, सिद्धि प्राप्त करने के स्तर पर नहीं, भक्ति भगवान से भक्ति मार्ग में एक रूप होने के लिए क्या आवश्यक है वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, और उन्हें पंडितों की टीका के विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट केयर, कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि भक्त जो है वो केवल जन सामान्य के कल्याण की ही सोचते रहते हैं। हर स्थिति में भक्त के मन में करुणा ही प्रधान रहती है, और इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया कि मैंने जो चिंतनशील भाव से लिखा है वो तो मेरे भक्तों को रोज एक श्लोक क्यों न हो श्रवण करना चाहिए, और क्योंकि वो शुद्ध भक्त की करुणापूर्ण वाणी है, हमारे लिए परफेक्ट परिपूर्णता से बनाई हुई है, हमें वो रोज हमें रोज वो भौतिकता से मुक्त करती है। थोड़े थोड़े स्तर पर क्यों ना हो, रोज हमें वो भौतिकता के बंधन से मुक्त करती है और रोज हमें भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए मदद करती है। खास कह रहा हूँ भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में, सिद्धि मार्ग में नहीं, योग मार्ग में नहीं, भक्ति मार्ग में भगवान से और निकट जाने के लिए ये मदद करती है। और भागवत के कथा के अंत में आपको ये अनुभूति होनी चाहिए कि मैं कल से आज भगवान से और थोड़ा निकट आ गया, तो आपकी ये कथा में आना सफल है। चाहे वक्ता कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, मंदिर कोई भी हो, और एक प्रमाण उसका है भागवत की परिपूर्णता का हमारे लिए, भागवत तो परिपूर्ण है ही, एक है हम भगवान से और कितने निकट हो गए, और दूसरा विषयों से कितना दूर हो गए। कथा के बाद दिव्य कथा की व्याख्या ही ये है, जिसमें बैठने के बाद में विषयों से विरक्ति का अनुभव हो और भगवान से आसक्ति का अनुभव हो, उसी को सत्संग कहते हैं। अगर विषयों से विरक्ति न हो और भगवान से आसक्ति न हो तो वो कथा बहुत बढ़िया होने पर भी उसको अर्थ नहीं है, और ये सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हो सकता है बोलने वाला व्यक्ति बहुत प्रयास करके बोल रहा हो, और श्रवण करने वालों की वो धारणा होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर भगवान से अधिक आसक्ति बनाने के लिए बैठा हूँ कथा सुनने के लिए, और विषयों से विरक्ति प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मंदिर में आने का प्रयोजन ही है, चाहे मंगल आरती हो, जप हो, दर्शन आरती हो, गुरु पूजा हो, कीर्तन हो, चरणामृत लेना हो, प्रसाद पाना हो, ये सभी 64 कार्यों का एक ही प्रयोजन है, भगवान से अधिक आसक्ति, विषयों से अधिक विरक्ति। तो हर समय भक्तों को इस चिंतन में रहना चाहिए, कितने साल हो गए मंदिर में, कभी पहली बार आया था, आज कितने साल हो गए, फिर दीक्षा हो के कितने साल हो गए, फिर सेवा करते हुए कितने साल हो गए, सत्संग करते हुए कितने साल हो गए, क्या वो विषयों से विरक्ति आई, क्या भगवान से आसक्ति हुई, इस विषय पे चिंतन करते रहना जरूरी है। उत्तर कुछ भी उसका हो, प्रश्न और चिंतन होते रहना चाहिए, क्योंकि जब जिज्ञासा होती है तभी उसका उत्तर मिलता है, जब प्रश्न होते हैं तभी उसका उत्तर मिलता है। आपके मन में अगर प्रश्न ही नहीं है तो उत्तर कैसे आएगा, और उत्तर क्यों दे भगवान आपको। ज़रूरत के अनुसार, आपकी स्वतंत्रता के अनुसार भगवान उसको प्रतिसाद देते हैं। तो यहाँ पर माता जी देवाहुती जी प्रश्न कर रही है, ये ब्राह्मण यानी अपने पुत्र को कह रही है, इतना बहुत दिव्य बात है ये, हे पुत्र ऐसे नहीं कह रही, नीचे बैठकर हे पुत्र मुझे बताइए, तो फिर भी अभी तक वो भाव है कि मैं माँ हूँ, ये पुत्र है, लेकिन अभी वो एक गुरु के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक योग्य सिद्ध पुरुष के रूप में उनको प्रश्न कर रही है। क्या कभी प्रकृति आत्मा का परित्याग करती है, क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के प्रति शाश्वत रूप में आकर्षित रहता ही है, तो इसका अलग होना संभव है क्या। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमको पता नहीं रहता है, लेकिन बहुत समय के बाद में सिंसियरली अगर हम भक्ति मार्ग में हैं तो मन में प्रश्न आता है कि हाँ मैं माया में फंसा हूँ। उसके पहले बताने रहता है, उसके लगता है सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन मैं माया में फंसा हूँ ये भी आध्यात्मिक प्रगति का एक चिन्ह है, टू अंडरस्टैंड कि मैं फंसा हूँ। जैसे जेल में जो व्यक्ति है उसको पता चलना कि मैं फंसा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, ये भी एक प्रगति का लक्षण है। और फिर जब मैं समझता हूँ कि मैं माया में फंसा हूँ तो दूसरा फिर प्रश्न आता है कि निकलना कैसे है। फिर पता चलता है कि बहुत कठिन है, मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतना अधिक फंसता हूँ। इस दलदल में जब मैं पड़ता हूँ तो जितना बाहर निकलने का प्रयास करता हूँ, हाथ पांव हिलाता हूँ, तो और ज़्यादा दलदल में घुस जाता हूँ। तो फिर प्रश्न आता है क्या होगा मेरा, अभी मुझे पता चला है कि मैं दलदल में हूँ और ये भी पता चल रहा है कि मैं और घुस रहा हूँ, तो क्या होगा। तो वो माता जी प्रश्न पूछ रही है कि जीव यानी हम प्रकृति के साथ में ऐसे फंसे हुए हैं तो इनका अलग होना संभव है क्या, क्योंकि जीव का प्रकृति के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक आसक्ति है। जैसे इंद्रियों को विषयों के प्रति आसक्ति होती है, जैसे जिह्वा को भोजन के प्रति आसक्ति होती है, आँखों को किस सुंदर वस्तुओं को देखने के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, जीने वाले हर व्यक्ति को न मरने की प्रवृत्ति होती है कि मुझे जीते रहना चाहिए, दिस इज नेचुरल। तो ऐसे आसक्ति वाले स्थिति में क्या कभी ऐसे होगा कि जीव प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो ये शास्त्र है ना, इन्होंने भगवत गीता के ऊपर भाषण किया है, भाष्य किया है, श्रीमद् भागवत के ऊपर किया है, चैतन्य चरितामृत के ऊपर किया है, इसी में कोई विसंगति नहीं है। जो भी वो लिख रहे हैं, जब भगवत गीता लिखी थी तो एक साल था, उसके बाद में कई साल तक वो भागवत लिखते रहे, उसके बाद कई साल तक चैतन्य चरितामृत लिखते रहे, लेकिन उनके सिद्धांत में कहीं भी विसंगति नहीं है। जो उन्होंने भगवत गीता में पहले श्लोक में लिखा है उसी तत्व को, उसी भाव को वो भागवत में चैतन्य चरितामृत के आखिरी श्लोक में भी वही लिख रहे हैं, क्योंकि उनके मन में उनके चेतना में एक स्थिर साक्षात्कार है। जब आध्यात्मिक जीवन में ठोस आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त होता है ना, तो वो जीवन के हर गतिविधि में, हर वाचा के वाक्य में, हर क्रिया में, हर सोच में वही चलता रहता है। जैसे आपको अगर अपने बालक पर प्रेम है तो आप बालक के पास में हो तो भी आपका प्रेम रहेगा, बालक के दूर काम पे गए हो तो भी रहेगा, किस समय के लिए 3 दिन बाहर गांव गए होंगे तो भी बालक का प्रेम आपका वैसे ही रहेगा। फ़ोन पे आएगा तो उसी प्रेम से बात करेंगे, सामने आएंगे तो उसी प्रेम से बात करेंगे, और दूर रहेंगे तो भी उसी प्रेम से बात करेंगे, क्योंकि वो प्रेम जो है वो स्थायी भाव है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक साक्षात्कार शुद्ध भक्त के चेतना का स्थायी भाव है, इसलिए इसमें विसंगति नहीं है। तो भगवद गीता में प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, प्रकृते क्रियमाणानि, बोल सकते हैं आप, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो ये जो प्रश्न किया है माता जी ने, इसके उत्तर में थोड़ा सा विवरण है इसके अंदर। वास्तव में जो बद्ध जीव है वो प्रकृति के नियंत्रण में ही सब कार्य करता है, प्रकृति के 3 गुण के प्रभाव में ही सारे कार्य करता है। उसको पता भी नहीं है कि कैसे मैं नियंत्रित हूँ, कैसे कठपुतली की तरह डोरी से बंधा होकर मुझसे कार्य किया जा रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, क्या सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही मेरी स्वेच्छा से जो चाहे वो करता हूँ, ऐसे प्रकृति का प्रभाव है। उसका 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है आवरणात्मिका और एक होता है प्रक्षकात्मिका। हाँ, आवरणात्मिका मतलब क्या होता है, समझो आपको भी पकड़ना है तो पहले जाकर आपके सर पे कंबल डालना है पूरा लंबा चौड़ा, जो आधा घुटने तक आ जाए ताकि आप पूछ दिखे ही नहीं, फिर आपको बांध कर कहीं निचली मंजिल में, कहीं दूसरे घर पे, कहीं किधर ले जाएं। तो आवरणात्मिका मतलब वो कंबल डालने जैसा है, आपकी नज़र ही बंद कर दी कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन पकड़ रहा है आपको, किधर से कहाँ ले जा रहा है, ईस्ट में कि वेस्ट में कि आगे के पीछे, जैसे वो बांधते ना पट्टी लगाए गोल घुमा देते हैं, पर आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो, नरसिंह भगवान की ओर जा रहे हो कि दरवाजे की ओर जा रहे हो, पता नहीं है आपका, गोल गोल घूम रहे। तो वो है आवरणात्मिका। तो माया देवी पहले हमको हमारी जो दृष्टि है सत्य की ओर, सत्य की ओर जानकारी जो है उसको ढक देती है, और फिर प्रक्षेपात्मिका मतलब खींचती है आपको अपने नियंत्रण में नीचे खींचती है, पता ही नहीं चलता है। तो हमको लग रहा है हम जा रहे हैं, लेकिन हमको पुश किया जा रहा है अज्ञान में, अज्ञान में ढकेल कर, अंधकार में ढकेल कर फिर धक्का दिया जा रहा है। और इतना होने पर भी ये आवरण और प्रक्षेप इतना पावरफुल है कि फिर भी हमको लगता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ। तो ये एक बात हो गई कि ये जो प्रभाव है कितना गहरा है, इसको ये प्रभाव है ये भी समझना कृपा है। और शुद्ध भक्त के संपर्क में आए बिना ये अनुभूति भी नहीं हो सकती है जो होती है सब भक्तों को। यहाँ पर वो अनुभूति सबको है जो बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि समाज में जितने करोड़ों लोग रहते हैं उसमें 0.001% भी लोग आप जैसे नहीं हैं, और आप उनमें से सबसे विरला लोगों के संग्रह में हैं जिन सबको पता है कि मैं माया में हूँ, मुझे माया से बाहर निकलना है, मुझे और अधिक जप करना है, मुझे शुद्ध भक्त के संग में रहना है, मुझे ये वाणियों को सुनते रहना है, निरंतर चेतो दर्पण मार्जनम साबुन लगाना है भगवान के नाम का और भगवान के पास जाना है। कितने लोगों को ऐसी जिजीविषा है, लेकिन इस तीव्र इच्छा को और जानकारी को बनाए रखना है नित्यम भागवत सेवया के माध्यम से। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाया है कि भौतिक प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। अपने बल पर हम भौतिक प्रकृति को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अगला श्लोक आता है जिसका इसका उल्लेख प्रभुपाद जी ने किया है। दैवी एष गुणमयी, बोलिए दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये सातवें अध्याय का 14वां श्लोक है, पहले वाला तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक था। ये जो श्लोक है इसमें दो बातें अलग अलग बताई गई है कि कैसे माया भयंकर है। दुरत्यय का अर्थ क्या होता है, जिसको लांघना पार करना बहुत ही कठिन है, और दुरत्यय का शब्द उसके आगे है कि नामुमकिन ही है, जैसे इम्पॉसिबल है, उसको दुरत्यय कहते हैं। कठिन का अर्थ होता है कि ठीक है कठिन है, प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने से यश भी मिल सकता है, लेकिन दुरत्यय यानी नियरली इम्पॉसिबल। वैसे इम्पॉसिबल इस विश्व में कोई होता नहीं, भगवान की कृपा से तो अंधा भी दिख सकता है और लंगड़ा भी पर्वत लांग के जा सकता है। एक ऐसा अरेंजमेंट भगवान ने करके रखा है कि जो उनकी कृपा को प्राप्त करेगा वो उसके जीवन में चमत्कार दिखाई पड़ेगा, असंभव अकल्पनीय अचिंत्य चमत्कार दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो कृपा का संपर्क नहीं है तो ये दुरत्यय है दैवी एषी। तो उसमें दो प्रकार की माया का वर्णन दिया है, एक दैवी माया दैवी प्रकृति और एक महामाया। लेकिन विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो प्रकृति का कृष्ण भगवान वर्णन कर रहे हैं वो भौतिक माया ही है, वो महामाया ही है, फिर भी यहाँ पर कृष्ण उसको दैवी प्रकृति माश्रितम कह रहे हैं, नहीं दैवी एष गुणमयी कह रहे हैं, क्योंकि उसका दोनों का उगम कृष्ण ही है, कृष्ण के ही इच्छा से दोनों कार्य करती है, महामाया भी और योग माया भी। इसलिए दोनों एक प्रकार से दैवी ही है, जिसका उगम दैवी है वो क्रिया में भी दैवी है, क्योंकि योग माया के पास जब अपने आप को हम प्रस्तुत करते हैं तो योग माया भक्ति विषय भक्ति विषयक चेतना में हमको रिस्पॉन्स देती है, और जब हम प्रकृति के साथ में भोग लेने के लिए प्रयास करते हैं, प्रकृति से अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं, मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे ये चाहिए पहनने के लिए, मुझे ये अधिकार प्राप्त करने के लिए चाहिए, यानी प्रकृति के कुछ चाहते हैं मेरे भोग के लिए, तो वही योग माया जो है ना वो माया माया बन जाती है। एनर्जी तो एक ही है, वो शक्ति भगवान की एक ही है, वो राधा रानी है और कोई नहीं है, लेकिन वही राधा रानी दुर्गा तब बन जाती है जब उससे हम कुछ लेना चाहते हैं अपने लिए, और जब वही हम कृष्ण के लिए सेवा चाहते हैं और सेवा के लिए कुछ इच्छा कर रहे हैं तो वही राधा रानी अपने सामने मूल रूप में प्रकट हो जाती है। अगर यहाँ पर भी आकर हम बोलेंगे मुझे भोग चाहिए, मैं अच्छा पति चाहिए, मुझको अच्छा बच्चा चाहिए, मुझको पैसा चाहिए, इनको ये चाहिए वो चाहिए, तो राधा रानी दिख रही है आपको, लेकिन वो काम करेगी आपके लिए योग दुर्गा देवी के रूप में, काली के रूप में। जैसा आपका अप्रोच रहेगा वैसा वो आपको रिस्पॉन्स देगी। उनमें कोई दोष नहीं है, वो परिपूर्णता के साथ खड़े हैं। हमारे उनके साथ में अपने आप को प्रस्तुत करने के मार्ग में विविधता है, इसलिए विविध रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो दैवी ऐसी गुणमयी, गुणमयी क्यों कहा गया, क्योंकि तीन गुण जो है इससे बनी हुई है, और ये तीन गुण जो है बहुत डिफिकल्ट है उसको क्रॉस करना। कभी सुबह सुबह अच्छे विचार रहते हैं, कभी दोपहर में बहुत कुछ ये चाहिए वो चाहिए रहता है, रात में पाप के विचार मन में आते हैं। सब कुछ साधना वंदना करने के बाद भी समय के प्रभाव से ये तीन गुण अपने ऊपर काम करते रहते हैं। और जरूरी नहीं कि सुबह ही अच्छे ही विचार आ जाए, सुबह भी बुरे विचार आ सकते हैं। सत्व रज तम गुण का मिश्रण कभी भी दिन में हमारी चेतना के अनुसार हम पर हम प्रभावित कर सकता है अपने आप को। तो भगवान कहते हैं कि अपने आप के बल पर आप इन तीन गुणों वाली माया को पार नहीं कर सकते। ये एक बात बताइए, एक पूरा चैप्टर है ये पूरा कंप्लीटली। जब तक जीव नम्रता को स्वीकार नहीं करता है कि हाँ मैं पतित हूँ, हाँ मैं माया में हूँ, हाँ मैं बहुत अणु मात्र हूँ, शक्तिहीन हूँ, हाँ अति दीन हूँ, ये स्थिति में जब तक नहीं आता है ना, तब तक ये किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती और किसी प्रकार की सहायता भी नहीं आ सकती है। अगर आपको अहम है तो आपको सहायता की क्या जरूरत है, सहायता लेने में आपको कमी लगेगी, अरे मैं क्यों सहायता लूँ, मैं तो अमुक तमुक हूँ, आई डोंट नीड। आपको जरूरत है तो आप ले लो, आपको भूख लग रही है तो आप जाके मांगो, मैं तो पेट भर के आया हूँ, ऐसा लगेगा आपको, तो आपको अन्न कैसे मिलेगा, प्रसाद कैसे मिलेगा, इसको जरूरत ही उसको मिलेगा। और जरूरत किसको होती है, जो नम्र होता है, तो नम्रता के ऊपर ही जरूरत प्रकट होती है। और अहंकारी व्यक्ति को जरूरत भी होगी तो प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको वो जरूरत प्रकट करने की भी शक्ति नहीं उसके अंदर। नम्रता वाले व्यक्ति के अंदर वो जरूरत प्रकट करने की हिम्मत होती है, वो सत्य का सामना करता है कि मुझे जरूरत है और मैं मांग रहा हूँ, मुझे दे दो। तो जब ये होता है ना, तब जीवन में परिवर्तन होना शुरू होता है। जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है, परिवर्तन के बिना ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन व्यर्थ है। जैसे आए हैं वैसे ही रहे और वैसे ही गुजर गए तो मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त किया। कुत्ता जैसे आया था वैसे ही जिया और वैसे ही मर गया, क्योंकि वो कुत्ता है। पंछी जैसे आया वैसे ही जिया वैसे ही चला गया, क्योंकि वो पंछी है। लेकिन आप और हम ऐसे रह नहीं सकते हैं, हमारा जीवन परिवर्तनशील है, परिवर्तन के लिए उपयुक्त है, इसलिए मनुष्य जीवन में परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर हमें और आपको अपने आप को एक दूसरे को मनुष्य कहलाना है, गर्व से नहीं अभिमान से कम सत्य के आधार पर, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं इसका विचार कीजिए। हम आपको विचार करना चाहिए और परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो उसका सबसे मूल प्लेटफॉर्म है नम्रता। तो आगे क्या भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। देखिए इतनी कठिन बात पहले बताइए, इम्पॉसिबल बताइए, और उस बात को बहुत ही भगवान ने आसान कर दिया है। इसमें भगवान का जो व्यक्तित्व है ना, उसका दर्शन होता है। भगवान का व्यक्तित्व क्या है, भगवान का व्यक्तित्व आपको फ्रस्ट्रेट करने का नहीं है। कुछ लोग बहुत क्रूर होते हैं, है ना, भूखे व्यक्ति को ऐसा ऐसा कुछ अच्छा अच्छा खाना दिखाते हैं और ऐसा दूर 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 लेके जाते हैं और हंसते रहते हैं, और वो आगे आगे आते रहते हैं तो उसको ऊपर कर देते हैं। और बहुत ऐसे धनी लोगों के बच्चे गरीबों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, तो क्रूर भावना के होते हैं, उनके दर्द पर उनको आनंद आता है, तो दुष्ट कहते हैं। लेकिन भगवान आपको एक कठिन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हम सब लोग फंसे हुए हैं और नामुमकिन है बाहर निकलना, तुरंत बता देते हैं, सस्पेंस रखते नहीं हैं कि इससे बाहर निकलना कैसे है। आप मुझे शरण में आ जाओ, माम एव मुझे ही, मुझे नहीं मुझे ही शरण आ जाओ, तो ये माया का जो पूरा प्रभाव और जाल और बद्धता जो है उससे आप तुरंत निकल जाओगे। मैं अनादिकाल से ही उदाहरण देते आ रहा हूँ, अगर मुझे किसी के घर पे जाना है मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया, बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत प्रेम करता है मुझसे, भोजन पे बुलाया है, 12 बजे का समय दिया है और मैं 12:45 को वहाँ पहुँच जाता हूँ और दरवाज़ा बेल दबा रहा हूँ, बेल का आवाज़ भी आ रही है, उसके बाद मुझे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, जैसे बेल बजती है तो जोर जोर से कुत्ते की, और वो कुत्ते की जिस प्रकार की भौंकने की आवाज़ है उससे मुझे पता चलता है कुत्ता कितना खूंखार है। आई कैन अंडरस्टैंड, वो कितने साइज का है उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके ध्वनि में कितनी शक्ति है पता चलता है कि वो भारी है मुझे। फिर मैं वो कुत्ते को देखता हूँ और उसका भौंकने का तरीका भी देखता हूँ तो मुझे और विश्वास होता है कि इसको मैं लांग नहीं सकता, इसको टाल कर इसके साइड से मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये मुझ पर अटैक करेगा, और इस स्थिति में मैं निश्चित रूप से उससे कमज़ोर हूँ क्योंकि मुझे अटैक करेगा तो मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊँगा, कट तो जाऊँगा ही, वो काटेगा ही मुझे, मुझे काटने के बाद में रेबीज होगा, क्या होगा पता नहीं मुझे, और मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल निकालता हूँ और दोस्त को फ़ोन करता हूँ, अरे मेरे प्यारे दोस्त मैं बाहर खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो, बीच में तुम्हारा कुत्ता है वो चिल्ला रहा है, मैं कैसे अंदर आऊँ। अरे 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 कभी के जल्दी आ गए तो, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात अभी आता हूँ। आता है उधर, टॉमी बैठो उधर, हेड क्वाइटली हेड उधर बैठो, करके बाजू में बैठ जाता, इतना बड़ा कुत्ता इतना जोर से भौंक रहा है, क्या कहते हैं उसको, अशक्य, इम्पॉसिबल कर रहा है मेरा प्रवेश करना, वो ऐसा बैठ जाएगा और इत्मीनान से सीना तान कर हम अंदर जाएंगे। तो यही है, मालिक के या दोस्त के शरण के बिना उस कुत्तों के लांघना इम्पॉसिबल है, मालिक की शरण ग्रहण करते ही वो इम्पॉसिबल चील आनंद से आप नाचते हुए जा सकते हैं, उसको नज़र मिलाते हुए चिढ़ाते हुए जा सकते हैं। है तो मेरे पे चिल्ला रहा था ना अभी, अभी चिल्ला रहा था तो अभी क्या चिल्लाएगा, चुप बैठ वहाँ पर, अभी मन में कह रहे हैं। तो मालिक का हाथ पकड़ के उसे गले मिलकर जा रहे हैं, वो भी बड़े आदर से दिख रहा है कि मेरा मालिक का दोस्त है। यही प्रिंसिपल है भक्ति में, माया देवी जो है वो उसी कुत्ते की तरह है, जब तक कृष्ण का सहारा नहीं है तब तक वो आपको फंसा के रखी हुई है, उसको लांग नहीं सकते हम। लेकिन जिस दिन ये अनुभूति के साथ, नम्रता के साथ हमने स्वीकार कर लिया कि हमें उनके शरण में जाना है, मायापति के शरण में जाना है, उसी दिन से हम रिहा होना आरंभ हो जाता है, अवर फ्रीडम स्टार्ट्स। अभी प्रभुपाद जी इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, वो श्वेताश्वतार उपनिषद से है, 4.10 बोलिए, मायां तु प्रकृतिम, मायां तु प्रकृतिं विद्यान, माइनं तु महेश्वरम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, क्या अर्थ है उसका, कि माया भले वो मिथ्या और नश्वर है लेकिन है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि माया नॉन एग्जिस्टेंट है, आप अपने माया का प्रभाव देखते हैं ना, हम लोग अपने जीवन में रोज देख रहे हैं, लेकिन उस माया के पार्श्वभूमि में वो जादूगर महेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा लिखा है इसके अंदर। हम जाने या ना जाने, आगे से वो माया कठपुतली के रूप में हमको नचा रही है, लेकिन उसके पीछे जो नियंता है वो महेश्वर श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर महेश्वर का उल्लेख जो है श्री कृष्ण के विषय में किया गया है, तो ये हमको पता होना चाहिए, और ये केवल सत्संग में सुन सकते हैं, बिना सुने शास्त्र से सुने हुए इस सत्य का परिचय हमको नहीं हो सकता है कि जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हम कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उसके मालिक श्री कृष्ण हैं, और जिससे हम कष्ट प्राप्त कर रहे हैं उससे अगर हमको मुक्त होना है तो हमको उसके मालिक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हमें जो कोई समझो हमारी संस्था में, हमारे मंदिर में या अस्पताल में, स्कूल में हमको कोई बार बार आके कष्ट कर रहा है तो उससे जूझने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल है। हम क्या ढूंढ के निकालते हैं, उसका बॉस कौन है, उसको फ़ोन कर दें, ये तुम्हारा आदमी आके हमको कष्ट दे रहा है, तो बॉस उसको फ़ोन करते हैं, तू वहाँ पर क्या कर रहा है, बोला था ना, हाँ सर सर नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं ऐसे ही आया था, नहीं सर सर नहीं आया। तो जो आपके ऊपर कुछ समय पहले हावी हो रहा था उस फोन कॉल के वजह से वो हाथ जोड़कर चला जाएगा। ये प्रिंसिपल है, अगर वो व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है जो जिसने फ़ोन किया है, तो हम उसके ऊपर जाके कॉन्टैक्ट करेंगे और उसको फिर फ़ोन करेंगे तो फिर वो भी निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये विश्व का जो राजनीति है, कूटनीति है, ये भी चलती है। और यही राजनीति कूटनीति हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी चलती है। हमको मायापति से संपर्क करना है। परास्य शक्तिर विविध ही व शूयते, ये एक शक्ति नहीं है कृष्ण की, ऐसे अनेक शक्तियाँ हैं। वो अनंत विविध शक्तियों के माध्यम से इस विश्व का संचालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके अलग अलग शक्तियों का संबंध हमारा होगा। कभी वायु के साथ में होगा, कभी जल के साथ में होगा, कभी संकट वायु से होगा, कभी जल से होगा, कभी किसी और सूर्य प्रकाश से होगा, कभी अक्टूबर हीट से होगा। किसी न किसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को अलग अलग उसका संपर्क होगा, लेकिन सभी व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति की शरण ग्रहण करनी है। अभी अगले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत वापस एक बार लिखा है, मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाम, बोलिए मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। ये भी श्वेताश्वतार उपनिषद का तीसरे अध्याय का श्लोक है। इसमें शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि मुक्ति यानी माया के प्रभाव से फ्रीडम किसी को चाहिए तो विष्णुर एव न संशया, विष्णु के अलावा और कोई व्यक्ति इसको करने में समर्थ नहीं है, नॉट पॉसिबल। एक ही व्यक्ति इस माया से हमको छुड़ा सकता है, वो है विष्णु यानी श्री कृष्ण। विष्णु भी श्री कृष्ण का ही विस्तार है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शंकर भगवान परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी सृष्टि के नियंता है, प्रथम नागरिक ब्रह्मांड के हैं, लक्ष्मी जी उनकी विष्णु जी की पत्नी है, सरस्वती विद्या के देवता है, बहुत पावरफुल देवता हैं सब लोग। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति मुक्ति नहीं दिला सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्र से, तीन गुणों के प्रभाव से और जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष देने की शक्ति किसी में नहीं है। और बहुत बढ़िया बात यह है कि वे स्वयं भी जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। ब्रह्मा जी शिव जी और देवताओं में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन हमारे अंदर है। उनके पास आके आप मांग रहे हो, अरे हमको मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। वो जानते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, हम मिथ्या विश्वास रख रहे हैं उसके ऊपर कि वो हमको छुड़ाएंगे, वो हमको भक्ति देंगे, मार्ग देंगे उनकी शरण लेने का, लेकिन वो हमको ये नहीं बताएंगे मैं आपको मुक्त करा दूंगा। इसमें डिफरेंस है। हाँ, वो महान क्यों है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम आपको मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, लेकिन मुक्ति दिलाने का मार्ग आपको दे सकते हैं। ये मार्ग से इनकी शरण में जाओ, फिर आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए कृष्ण के विचार में और देवताओं के विचार में कोई विविध ये अलगता नहीं है, पृथकता नहीं है। कृष्ण जी का विचार कि मैं दे सकता हूं और बाकी लोगों का विचार कृष्ण दे सकते हैं, इसमें समानता है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो इसलिए हम लोगों को इस बात पर विश्वास करना है। यहाँ पर देवहूति जी जो है वो शरणागति की भावना की ओर आ रही है धीरे धीरे। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवहूति जी बड़ी बुद्धिमान है। और बड़ी बुद्धिमान किसको कहते हैं? जिनको भगवान पर श्रद्धा है वही बुद्धि का लक्षण है। जिनको भगवान पर श्रद्धा है वो बुद्धि का लक्षण है, और भगवान के श्रद्धा के आधार पर विचार करते हैं उस बुद्धि को कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। जो बुद्धि सत्य और असत्य का भेद जानती है, अच्छा या बुरा इस भेद को जानती है, कल्याणकारी और विनाशकारी क्या है इसके बीच में भेद जानती है, उस बुद्धि को कहते हैं सद असद विवेक बुद्धि। यानी असत्य क्या है और सत्य क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके शरण में जाना चाहिए किसके शरण में नहीं जाना चाहिए, ये जो विचार देती है उसको सद असद विवेक बुद्धि कहती है। और सद असद विवेक बुद्धि केवल भगवान के शरणागति के मार्ग पर स्थित जो लोग हैं उनको ही प्राप्त होती है। विश्व में जो लोग हैं वो उनका IQ हमारे आपसे टेक्निकल ज़्यादा होगा, लेकिन वो बुद्धि उनके मुक्ति के लिए सहायता नहीं करती है और दुनिया में फंसाने के लिए सहायता करती है, क्योंकि वो आपको केवल भौतिकतावादी कार्यों में भी संलग्न रहने के लिए उत्साह देती है, भोग के लिए प्रवृत्त करती है। भोग कैसे अधिक लिया जाए उसको प्रवृत्त करती है, उसको सद असद विवेक बुद्धि नहीं कहते हैं। कि जिस समय हम भगवान के नाम का जप करते हैं उसी क्षण से हमारे अंदर सद असद विवेक बुद्धि आना आरंभ होता है। और देवा होती तो इतनी श्रेष्ठ माता जी है, कुल से जन्म से माता पिता के दृष्टि से जीवन कार्य के दृष्टि से हर दृष्टि से उसने राजपुत्री स्वयंभू मनु की पुत्री होने पर भी एक जंगल के फकीर के साथ विवाह किया था केवल आध्यात्मिकता देखकर शरणागति के भाव से। तो उसके अंदर ठोस से भरी हुई है ये सद असद विवेक बुद्धि, इसलिए वो ऐसे प्रश्न कर सकती है जो हम सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। तो इस श्लोक के अनुवाद में लिखा है कि जैसे पृथ्वी और पृथ्वी के द्वारा निर्मित फूल फल जिसमें गंध होता है, वो गंध और वो पृथ्वी में अंतर नहीं होता है। बारिश आए तो पृथ्वी से भी गंध आती है और पृथ्वी के द्वारा जो निकलते हैं फल फूल उनसे भी विविध गंध आता है, तो वो अलग नहीं है, वो सेम है। सेम वस्तु अलग अलग विविध प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। गंध तो एक है लेकिन वो गुलाब के माध्यम से अलग रूप में प्रस्तुत हो रहा है, आम के रूप में अलग प्रस्तुत हो रहा है, और चंपा और मोगरा के रूप में अलग प्रस्तुत हो रहा है। लेकिन गंध आ रहा है पृथ्वी से, वो जैसा पेड़ है उसके माध्यम से वो अलग अलग गंध प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस पुष्प से आप वो अगर साइंटिफिकली प्रक्रिया करके वो गंध निकाल देंगे तो वो पुष्प किसी भी काम का नहीं है। उसी प्रकार से अभी आप ध्यान से सुनिए जो आज के श्लोक में एक वाक्य दिया है, वो हमारे लिए कितना समर्पक है। अगर हमारे अंदर सद असद विवेक बुद्धि नहीं है तो हमारे अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर अग्नि है और उसमें प्रकाश और उष्णता नहीं है, हाँ, धान्य को पकाने के लिए वो मदद नहीं कर सकता है। अग्नि है लेकिन वो आप रखा है पानी उसके ऊपर दाल डाल के दाल पकती नहीं है, तो अग्नि का क्या मतलब है, उसको बंद कर देंगे आप। उसी प्रकार से अगर सद असद विवेक बुद्धि हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा मनुष्य होना निरर्थक हो गया, यूजलेस हो गया। तो किसी भी प्रकार से सभी मनुष्य जीवों को ये सद असद विवेक बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, और उसके लिए केवल एक ही और एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। कर्मफल का मार्ग से सद असद विवेक बुद्धि आएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ फल की अपेक्षा है। वो मिलेगा तो हैप्पीनेस, नहीं मिलेगा तो दुख है ना। पैसे कमाए तो मैं जलेबी खाऊंगा, पैसे कमा के भी जलेबी नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा कमाना वेस्ट। लेकिन क्योंकि ध्यान जलेबी के ऊपर है, और ज्ञान मार्ग में क्या है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वो चाहिए वो चाहिए। किसी से प्रेरित है हम, किसी इच्छा से प्रेरित है। और सिद्धि में क्या प्रेरित है कि मैं चमत्कार चाहिए, मैं भी किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो पढ़ने के लिए योग्य होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, मुझे पढ़ने को आना चाहिए या मैं हाथ लगाऊंगा डॉक्टर के रूप में तो मरीज ठीक होना चाहिए। ये ऐसे चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, कभी सोचते भी हैं कि मैंने हाथ लगाया पेशेंट ठीक हो गया, पेशेंट ने बोला भी कि सर आपको देखते मैं आधा अच्छा हो जाता हूँ, तो आपको लगता है हाँ सही में मैं ग्रेट हूँ, देखो मेरा दर्शन इतना पावरफुल है, मुझे देखते ही मरीज को आधा अच्छा लगता है। फिर दवा तो आधा काम कर देता है लेकिन आधा काम तो पहले ही मैं कर देता हूँ। इसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। लेकिन जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता है। भक्ति मार्ग में ये बाकी तीन मार्ग में अंतर क्या है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और सिद्धि कांड, ये तीनों में हम केंद्र स्थान में होते हैं। मैं, मेरे लिए कर्म का फल चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, मैं भगवान का उपयोग कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, उनके लिए अनुष्ठान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए। आई एम द रेसिपियंट, आई एम द भोक्ता। और भक्ति मार्ग एक ऐसा ही एक ही मार्ग है जिसमें हम भगवान को भोक्ता बनाते हैं और खुद उस सिंहासन के उठते हैं और भगवान को उसमें बिठाते हैं। वो सिंहासन किस चीज़ का है, भोक्ता, नियंत्रा, नियंता, हाँ, यानी एंजॉयर, प्रोप्राइटर एंड कंट्रोलर, ये तीन का जो सिंहासन है अभी हम उस पर बैठे हुए हैं। जब स्वेच्छा से समझ बूझ के साथ हम उतरते हैं और भगवान को वहाँ स्वेच्छा से बिठाते हैं तो भक्ति आरंभ होती है, और फिर जो भी आगे होता है वो केवल भगवान के लिए होता है। मुझे इसका क्या काम मिलेगा, मैं सुबह आके मंगल आरती किया भगवान का तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये गुरुजी की सेवा की तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ये किया तो मुझे वहाँ प्रसाद मिलेगा, मैं आके डीटी किचन में सॉरी डीटी किचन में जाके कुकिंग किया तो मुझे वहाँ प्रसाद मिलेगा, ये सारी अपेक्षाएं नष्ट हो जाती है, नष्ट होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो अभी भी है तो अभी हम कर्मकांड में ही है। या ध्यान रखना, आप मंदिर में आकर किचन में भगवान के लिए राजभोग बना रहे हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि ये जो मैंने बनाया है या जो उसने जो बनाया है वो मुझे महाप्रसाद में एंड में मिलना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं तो हमारी भक्ति नहीं हो रही है, कर्मकांड ही हो रहा है। उसी कर्म के फल के ऊपर हम आ सकते हैं, उसी के लिए वो कर्म कर रहे हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर हम वो कुकिंग कर रहे हैं, मिले नहीं मिले ठाकुर जी की इच्छा है, देना देंगे, एक दिन का देंगे नहीं देंगे उनकी इच्छा है। जल आ गए एक बूंद भगवान को भोग लिया हुआ, महाप्रसाद को पी लिया, संतुष्ट हो गए, नहीं भी दिया तो ठीक है। कई भक्त ऐसे हैं जिनके घर में 15-15 डीटीज है और मैं जानता हूँ उनके घर में 6-6 आइटम मंगल भोग में बनते हैं, लेकिन वो माता जी कई सालों से नियम से वो 6 मंगल भोग कभी भी ग्रहण नहीं करती है, महाप्रसाद के रूप में सबको बांट देती है, जो आने जाने वाला है, जो धोबी है, कोई जो भी आ रहा है जा रहा है वो सबको बांट देती है, कभी भी उसको ग्रहण नहीं करती है। उसका भाव क्या है कि 100% भगवान आपके आनंद के लिए है, किसी भी तरह से किसी भी मात्रा में, कम से कम मात्रा में मेरा उसमें स्वार्थ नहीं कि मुझे ये चखने को मिलेगा या मेरे भाग्य में आएगा, इसे भक्ति कहते हैं। हमको ये करना है, कठिन बात है बहुत, अपेक्षा करना स्वाभाविक है कि मैं इतना कर रहा हूँ तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए, मैं तो मंदिर में इतना दिन से सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो संडे का राजभोग का थोड़ा सा फीस प्रसाद तो मिलना ही चाहिए, और क्या अभी क्या करें फिर, ये सोच जानी चाहिए धीरे धीरे। अहैतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति, क्या अर्थ है उसका, जब ये अहैतुकी होगा तभी ही हमारी आत्मा परम संतुष्ट हो जाएगी, सैटिस्फाइड हो जाएगी, निरपेक्ष हो जाएगी, और अधिक निरपेक्ष हो जाएगी। जब तक हेतु मन में होता है दुख बना रहता है, इट इज ऑलवेज देयर, क्योंकि जो स्वार्थ आपके मन में है वो नहीं पूरा हुआ तो दुख होगा आपको, अरे मैंने सोचा था मुझे वो मिलेगा लेकिन नहीं मिला, क्या फायदा, कब से बोल रहा हूँ फिर भी देने मिल रहा है, ये वो दे रहा है कि नहीं दे रहा वो बात अलग है, लेकिन हम जब तक इच्छा रख रहे हैं तब तक असंतुष्टि हमारे अंदर बनी रहेगी। तो इसलिए भक्ति मार्ग में आने के बाद ही ये परिपूर्ण शरणागति हो सकती है, भक्ति मार्ग में ही हम सीख सकते हैं, कर्म कांड के मार्ग में शरणागति नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अपेक्षा बनी रहती है, अपेक्षा के होते हुए शरणागति नहीं हो सकती है। भक्ति मार्ग में ही अपेक्षा से निवृत्ति हो सकती है, इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते अंतरात्मना, सारे योग अच्छे हैं जो मैं मुझसे ही आपको जुड़वाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब योग अच्छे हैं, जो जो मुझे जोड़ रहा है वो अच्छा होता है, लेकिन इन सारे मुझे जोड़ने वाले योगों में से भक्ति योग श्रेष्ठ है। मदगते अंतरात्मना, जो योग मुझे आपको मेरी अंतरात्मा से जोड़ देता है पूरे समर्पण भाव से, वो सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन उसी को तुम स्वीकार करो, तो वो कहता है अरे मैं तो धनुष बाण लेके युद्ध में खड़ा हूँ, खून खराबा होने वाला है, चीख मृत्यु, हाथ पांव टूटने वाले हैं, ऐसे भयंकर स्थिति में मदगति अंतरात्मा मैं कैसे करूँ, हाउ टू डू इट। तो कहते माम अनुस्मर युद्ध च, अभी रोटी बना रहे हो मंदिर में आकर तो बहुत आसान है भगवान के लिए विचार करना, तो अरे भगवान के लिए, भगवान के मंदिर में, भगवान के किचन में, पीछे इतने सुगंध वाले वातावरण में, उनके दिव्य अस्तित्व के वातावरण में मैं उनके लिए ही रोटी बना रहा हूँ, तो सोचना आसान है कि आप है मैं हूँ, आपका हमारा संबंध है प्रेम का। लेकिन जहाँ युद्ध में गर्जना हो रही है और चीखे हो जा रही है, मृत्यु दिखाई पड़ रहा है, खून खराबा हो रहा है, मांसों का टनों में वहाँ पर निर्माण हो रहा है, उसमें कैसे करें, इसका अर्थ यह है कि विकट स्थिति में कैसे करें, अनुकूल स्थिति में हो रहा है विकट में कैसे करें, निकले भगवान कह रहे मेरी स्मृति बनाए रखो, सुविधा में असुविधा में, सुख में दुख में, मेरी स्मृति को बनाए रखो, मेरे लिए ही कार्य करो। क्या वो श्लोक है, मन मना मद भक्तो भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कारु, चार चीजें उसके अंदर, मन मना यानी मेरे मन से मित्र से एक रूप हो जाओ, इसका अर्थात अर्थ क्या हुआ, मेरा विचार करो, मेरी स्मृति बनाए रखो, चिंतन करो मेरे ऊपर, मन मना, भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, यानी मेरी सेवा करो, मद याजी, मेरे लिए त्याग करो, जो भी कर रहे हो मेरे लिए करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, किसके लिए कर रहे हो, उनकी सेवा में भी कार्य किसके लिए कर रहे हो, सुस्वार्थ के लिए कर रहे हो कि उनकी संतुष्टि के लिए कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयोजन क्या है, चार लोग सेम काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे लेकिन चार लोगों का प्रयोजन अलग अलग हो सकता है, वो प्रयोजन भगवान की संतुष्टि, सम सिद्धिर हरि तोषणम, ये होगा तो वो भक्ति हो जाती है। मदयाजी माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो, जब भी मौका मिले मुझे प्रणाम करो, मुझे वंदन करो, लगता है बहुत बड़े अहंकारी है भगवान, मैं मुझे करो, मेरे लिए करो, मेरा विचार करो, मेरा मेरा मेरा, ये क्यों कहना जरूरी पड़ रहा है, क्योंकि हम सब लोग भूल गए सत्य को। अगर पिताजी कहता है बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ, तो बेटा बोलेगा क्या अहंकारी हो तुम, मैंने जन्म दिया है, अरे कितने अहंकारी हो, मैं तुम्हें पालता हूँ, अरे बहुत ज़्यादा ही अहंकारी हो। लेकिन ये सब सत्य है, अहंकार की बात अलग है, being the truth is more important than how you feel about it, है ना, आपको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्य इम्पोर्टेंट है, और सत्य यही है कि हम भूल चुके हैं इसलिए भगवान बार बार याद दिला रहे हैं। वो एक प्रकार की भगवान की नम्रता है, अहंकारी होने की प्रतिमा बनेगी भगवान की, इसके रिस्क लेने पर भगवान बता रहे हैं आपको कि मैं हूँ। अगर बेटा, अगर बेटे को पिताजी बताने में संकोच कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो उसको लग सकता है कि कोई और मेरा पिताजी होगा, मुझे ढूंढना चाहिए। अगर इस मन में दुविधा आ गई ना, बालक को तुरंत बताना चाहिए बेटा ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मतलब प्रूफ क्या है, माताजी को पूछो, माताजी बताएगी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो वहीं पर वो सर्च खत्म हो जाता है, उसका भटकना समाप्त हो जाता है। नहीं तो वो भटकता रहेगा, ढूंढते रहेगा, सब लोगों को पूछता रहेगा आप मेरे पिताजी हो क्या, आप मेरे पिताजी हो क्या, आप मेरे पिताजी हो क्या, कितना फनी लगेगा वो, और सब लोग हंस रहे हैं कि मैं तो नहीं लेकिन मुझे पूछ रहा है, मैं उसको भटका सकता हूँ कि हाँ मैं हूँ, और कल बोलूँगा नहीं नहीं सॉरी मैं कल गलत बोला था। अर्थात क्या इसका, कि विश्व में ऐसे हम भटकते रहेंगे तो क्या होगा हमारा अंजाम, इसलिए भगवान बता रहे हैं। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध यानी विकट स्थिति, कठिन स्थिति, बहुत ही भयंकर स्थिति, उसमें भी आपको मेरे लिए ही, मेरी याद करके मेरे लिए ही कार्य करना है, तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। माम अनुस्मर युद्ध च करने के बाद क्या हुआ, अर्जुन युद्ध में विजयी हो गए, और बताया गया था युद्ध करो मेरे लिए लेकिन यश की अपेक्षा मत करो, आप जीतोगे ये सोच के युद्ध मत करो, खाली युद्ध अपना कर्तव्य के रूप में करते रहो, आपका कर्तव्य मेरी स्मृति में करते रहो, मेरे लिए करते रहो, हमको यही करना है बस, जो भी कर रहे हैं रोज सोचना है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, जो भी प्राप्त हो रहा है भगवान की सेवा में लगाना है, ऑन द ग्राउंड लेवल हमको यही करना है रोज कि मैं ये भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, ज्ञानी नहीं हूँ, साक्षात्कारी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी करना चाहता हूँ आपके लिए करना चाहता हूँ, आप मेरी सेवा जो है कहते ना गोड मानून स्वीकार करा, मतलब मीठा मान के जो भी है प्लीज़ एक्सेप्ट, ये मेरी बेस्ट कैपेसिटी है, मैं प्रेम से आपके लिए कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए भगवान, मैं आपका हूँ, आप चाहे तो मुझे अपना बना लीजिए, भगवान को ये नहीं कह सकते मुझे अपना बना लो, नहीं मैं आपका हूँ ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे स्वतंत्रता में है, मैं आपका हूँ आप चाहे तो मुझे अपना बना लो, ये भक्ति का सार है। और जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का समझता है उसका प्रूफ क्या है, क्योंकि वो बोलता भगवान के बारे में, करता भगवान के लिए है, जो भी कुछ करता है सोचता भगवान के लिए है, यहाँ तक कि सोता भी भगवान के लिए है ताकि जल्दी उठ के फ्रेश होकर भगवान की सेवा करूँ, उसका उठना बैठना सोना खाना पीना कार्य करना सब कुछ उनके लिए ही है, वो हम कह सकते कि वो उनका है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी छोड़ नहीं सकते। जिस व्यक्ति को भगवान ने स्वीकार किया है उस पर माया प्रभाव नहीं कर सकती है, ये देवाहुति माता जी के प्रश्न का उत्तर अभी आगे मिलेगा आपको आगे श्लोकों में, यही उत्तर है उसका। जब उनकी शरण कोई ग्रहण करता है ना, रामायण में भगवान ने कहा है उसके लिए वो क्या करते हैं, किसके प्रसंग में, जब विभीषण जी आकाश में खड़े हैं, रावण से अपमानित होकर वो निकल गए वहाँ से, चार लोगों को लेके आए और राम जी के चरण में आने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी दिव्य विद्या जो मायावी विद्या है उसके वजह से आकाश में खड़े हैं और प्रपोजल भेजा है कि मैं आना चाहता हूँ। और यहाँ पर बड़ी महा मीटिंग हो रही है, क्या करें इनका, सब लोग बोल रहे नहीं मत लो, ये राक्षस का शत्रु का भाई है, ये उनका चाल है, ये उन्होंने ये सब नाटक बना के भेजा है कि मैं ठुकरा गया हूँ और आपके शरण में आना चाहता हूँ, ये सब नाटक है। आपके अंदर आकर आपके अंदर के गुट में बैठकर पूरा जानकारी लेकर वो अपने भाई को देगा और फिर अपन आक्रमण करके हम हार जाएंगे सब लोग। एक एक अनुभवी योद्धा है जाम्बुवंत जैसे, वो सब लोग यही बोल रहे हैं मत लो भगवान, अगर आप मेरी लाइफ चाहते हो मुझे पूछ रहे हो, मेरा कहना है मत लो इसको किसी भी कीमत पर मत लो, एक बार ये अंदर आ गया इसको बाहर निकालना मुश्किल होगा और हमारा पराजय वहीं से आरंभ होगा। सबको पूछने के बाद में आखिरी बार हनुमान को पूछा, हनुमान जी आपका विचार क्या है। ये ना संतों की मैनेजमेंट की स्टाइल है, भगवान के द्वारा आई हुई है वो। संत लोग जब भी कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो वो सबको पूछते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात फिक्स होती है कि उनको क्या करना है। वो केवल आपकी राय जानना चाहते हैं कि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है, लेकिन वो जिस बात पर उनको पूरी श्रद्धा है, निष्ठा है और वो जन कल्याण में सर्वश्रेष्ठ है, वो बिना हिचकिचाहट के वो लोगों के मत के विरुद्ध भी वही करते हैं, क्योंकि उनको इस बात पर निष्ठा होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सबके कल्याण में है। भगवान अभी सबको पूछ रहे हैं, आखिरी हनुमान को पूछ रहे हैं, तो हनुमान ऐसे एक ही व्यक्ति निकले जिन्होंने कहा इसको लो। तभी सब लोग देख रहे हैं हनुमान को, चौंक कर रहे, हम सब लोग क्या बोल रहे हैं, हनुमान जी कुछ अलग ही बोल रहे हैं, क्या उसका बोलता है, बेसिस क्या है उसका बताओ। बोले मैं जब लंका गया था जलाने के लिए तो एक ही जगह थी पूरे लंका में राक्षस के राज्य के बीच में जहाँ पर राम नाम जप हो रहा था, जहाँ पर इतना साहस किसका हो सकता है, रावण के नगरी के बीच में बैठकर राम नाम का जप, आंगन में तुलसी और पूरे दीवार पे सब जगह पर राम 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 लिखा हुआ है। यहाँ तक कि मैं वो देखकर उसकी ध्वनि सुनकर मैं खींचता चला गया तो देखा तो विभीषण महाराज अंदर बैठकर राम नाम जप कर रहे हैं, आपका नाम जप कर रहे हैं। एक तो होती है श्रद्धा और निष्ठा, एक होता है साहस, कितनी हिम्मत है उसके अंदर, ऐसे भाई के राज्य में बैठकर राम नाम ले रहा है। और भाई आता भी है, अरे क्या कर रहे हो तुम, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो और सब घर पे राम का नाम लिखा है, तो कितना चतुर होता है भक्त। विभीषण कहता है नहीं भैया, ये तो मैं आपका ही नाम ले रहा हूँ, वैसे रा यानी रावण, म यानी मंदोदरी आपकी पत्नी, दोनों का शॉर्ट फॉर्म उच्चारण कर रहा हूँ। इतनी भी बुद्धि कब आती है, भगवान की शरणागति से आती है, तत्काल प्रेजेंस ऑफ माइंड तुरंत उत्तर दिया। तो वो सब वर्णन किया तो ये जेन्युइन आदमी है कि आपके प्रति भक्ति करने वाला व्यक्ति, अभी तो लात मारा इसलिए नहीं आ रहा है, वो पहले से आपका भक्त है, पहले से रावण को सलाह दे रहा है इनकी शरण लो, इनकी वाइफ को वापस कर दो, आप आपका हित नहीं है, आपका नाश होगा, ये पहले से यही बोल रहा है, अकेला व्यक्ति बोल रहा है, सबके खिलाफ एक ही व्यक्ति सत्य की बात कर रहा है। तो फिर भगवान उस समय फिर अपना फाइनल ओपिनियन है ना, वो एक्सपर्ट फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में विभीषण आ रहा है। अभी ये क्या बोला भगवान के, हमारे आज का हमारा लास्ट डिस्कशन है। प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार आकर मुझे कहता है कि मैं आपका हूँ, तव अस्म इति, मैं आपका हूँ, उसका बड़ा सुंदर श्लोक है, एक बार तव अस्म इति तवास्मिति कहकर प्रपन्नम मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी भी नहीं भूलता, चिरंतन काल तक जब तक निर्माण है, सूरज है चांद है, जब तक जीवन है तब तक मैं उसे नहीं भूलता, भले वह मुझे भूल जाए, एक बार कहने से मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके हित की रक्षा करता हूँ, उसके जीवन की रक्षा करता हूँ, उसके कल्याण की रक्षा करता हूँ। और कहते हैं विभीषण तो आ गया, मैं शरण तो उसको दूंगा ही क्योंकि शरण चाहता है, रावण भी आएगा ना तो भी मैं माफ करूंगा उसको, मैं उसको भी शरण दूंगा। सब लोग चौंक गए क्योंकि भगवान कैसे हैं हमारे, वो विभीषण को लाया उन्होंने, जो शरणागति हो गई, दंडवत प्रणाम किया और बोला मैं आपके शरण में हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, तो तुरंत उन्होंने उनका अभिषेक करा दिया। आप अरे
पहले ही क्या बोला उनको, हे लंकेश, वो तो लंका का ईस तो बनना बाकी है, उसको अभी युद्ध होना बाकी है, फिर जीतेगा फिर बाद में राजा बनेगा, तो लंकेश के रूप में संबोधन किया और वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया, यानी प्रॉमिस कर दिया कि आप लंका के राजा होंगे। तो सब लोग पूछते हैं कि अभी आपने रावण के बारे में ऐसा कहा, इसके भाई को राजा बनाते, रावण आएगा तो उसको क्या देंगे आप? बोले उसको मैं अयोध्या का राज दूंगा। अरे अयोध्या में तो भरत जी बैठे हुए हैं, उनको पर अन्याय करेंगे आप, उनको क्या देंगे? वो भी आपके शरण में है। विभीषण आया, फिर तथाकथित रावण शरण में आया, तो आपने दोनों को उसको योग्य काम दे दिया। वो तो पहले शरण में आपके, उसको मैं वैकुंठ का राज्य दूंगा। तो प्रभु फिर आप क्या राज्य करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? बोलो मैं भक्तों के हृदय में जाके रहूंगा। कैसे हमारे प्रभु है, देखिए आप, शरणागत वत्सल, हाँ, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, परात्पर भगवान हमारे प्रभु रामचंद्र श्री कृष्ण हैं। एक बार कहने से हम बड़े बड़े जंजाल से मुक्त हो सकते हैं, एक बार कहने से। अभी आप इस कथा के बाद या अभी अभी के अभी राधा गिरधारी को देखकर, जगन्नाथ को देखकर, गौर निताय को देखकर एक बार बोल दीजिए, मैं रोज बोलता हूँ जब भी आता हूँ तभी, कि मैं आपका हूँ, कृपया मुझे अपना बना लीजिए। कि वही सब सबसे बड़ी सुरक्षा का एक साधन है, वही प्रेम का साधन भी है, माया से बचने का साधन भी वही है, जीवन के यश का साधन भी वही है, परम कल्याण का साधन भी वही है, कि भगवान मैं आपका हूँ, पतित हूँ, टूटा फूटा हूँ, यूजलेस हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे वो? क्योंकि वो जानते हैं सब लोग इस स्थिति में हैं। हम जब बोलते हैं तो वो प्रवृत्त हो जाते हैं लेने के लिए, हम वैसे ही हैं लेकिन बोलते नहीं हैं तो वो क्यों ले हमें? वाई यू शुड एक्सेप्ट अस? जरूरत क्या है आपको, जरूरत तो उनको जरूरत क्या है? जब हमें जरूरत होती है तो फिर वो पूरी करते हैं। तो आइए, देवावती माता जी का ये जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम आत्मसात करें। लेट अस इम्बाइव दैट भाव, जब हमें भगवान की शरणागति लेनी है। शरण और शरणागति, इसमें क्या अंतर है? शरण तो हम सब है माया के, एवरीबॉडी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माया। आगति यानी हम जानबूझकर ये समझ रहे हैं कि मुझे अभी ये शरण छोड़कर भगवान के चरणों में आगति लेनी है। शरणागति में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंटली आई एम एक्सेप्टिंग द शेल्टर, उसको शरणागति कहते हैं। वरना शरण, शरण तो सारे जीव हैं, हम सब भक्त तथाकथित, भक्त तथाकथित अभक्त, जानवर पंछी जितने भी जीव हैं, प्रकृति सब भगवान के शरण ही है, भगवान के शरण में ही कार्य करती है। लेकिन आगति से क्या होता है, हमारी जो स्वेच्छा है उसमें सम्मिलित हो जाती है, और जब हमारी इच्छा से हम वो स्वीकार करते हैं शरण, तो भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए शरणागति होना जरूरी है, स्वेच्छा से भगवान की शरण ग्रहण करना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, ये कमजोरी नहीं है, ये शक्तिहीनता नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति क्यों है, क्योंकि सबसे बड़े शक्तिमान व्यक्ति को वो अपना बना लेती है, वो हमारे हो जाते हैं सबसे बड़े शक्तिमान। एक बार सबसे बड़े शक्तिमान व्यक्ति को हमने अपना बना लिया तो और 50 लोगों के साथ मिलना जरूरी है क्या? आपको हर जगह दस्तखत देना, अप्लाई करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति की शरण ग्रहण करो, बस पूरा जीवन सफल हो जाएगा एक ही झटके में। बार बार ठोकर खाने की जरूरत नहीं, 10 जगह जाकर, 10 एप्लीकेशन लेकर। अकाम हो, सर्व काम हो, वह मोक्ष काम हो, वह उदारी दी, बहुत सारी इच्छाएं हैं, या तो कुछ भी इच्छा नहीं है, या तो मोक्ष की इच्छा है, या तो कुछ भी है, कुछ भी हो, एक ही व्यक्ति के पास जाओ, गिड़गिड़ाओ उनके चरणों में, और अपना अर्जी देने के पहले ये बात जरूर करो कि मैं आपका हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा हरि बोल।
हाँ हरे कृष्ण रूप से किया और सरल रूप से किया, बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने आज सुंदर कहूँ भगवान को प्रयास करूँगा।
क्या प्रयास करना है उसमें, बोल देना है बस। क्या है, व्हाट इज प्रयास इन दैट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, दैट्स ऑल। बाप रे, हरे कृष्णा। देखिए राधा रानी की वो पोजीशन है, वो एक ही व्यक्ति ऐसी है जो स्वयं कृष्ण है। बलराम जी कृष्ण का विस्तार है, लेकिन राधा रानी कृष्ण का विस्तार नहीं है। राधा रानी स्वयं कृष्ण है, कृष्ण स्वयं राधा रानी। चंद्रावली उनका विस्तार है, ललिता उनका विस्तार है। तो ये वास्तविकता है कि वो कृष्ण के स्वामी है। राधा रानी का एक नाम है कृष्णेश, और ये सत्य है। इसलिए चंद्रावली कहती है कि मैं उनकी हूँ, और राधा रानी कहती है कि वो मेरे हरि बोल, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ उनको दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच प्रवचन के लिए। प्रश्न ये था आपका कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और हमारे कई भक्तों के बीच में से देखा है कि जब कोई विकट परिस्थिति आती है, हम लोग कुछ ऐसी घटना घटती है, डॉक्टर का सब कुछ छीना जाता है, तो कुछ दुविधा की परिस्थिति निर्मित होती है। इस समय में हमने देखा कि कई अन्य योगी के पास या बाबा जी के पास किसी और के पास शरणागति लेते हैं। ऐसे परिस्थिति में प्रॉब्लम्स है आस पास पर
क्या है
जो उनके साथ में रहने,
थोड़ा थोड़ा माइक दूर पकड़ो, थोड़ा सा बहुत पास पकड़े। हाँ बोलो।
उनके साथ में थोड़ा आदान प्रदान करते हैं।
हाँ तो प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न पूछिए।
ये है कि वेद कब कृष्णा मानते कृष्णा सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर उधर भी जाकर के क्या करेंगे, शरणागति।
किसी किसी और व्यक्ति के पास जाना यही प्रूफ है कि वो पूर्णता शरणागत कृष्ण से नहीं है। कृष्ण को मानने से काम नहीं होता है, मानना तो शुरुआत है, उन पर निष्ठा रखना, समझना कि वो भगवान है, ये हमारी भक्ति की शुरुआत है। लेकिन शरणागति ये आवश्यक है, रिक्वायर्ड है। और जब हम भगवान की भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जब बहुत विकट संकट आता है तो फिर कहीं और चले जाते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, या तो अलग मार्ग है। ये प्रूफ है कि हमारी शरणागति अभी कच्ची है, 100% नहीं है ऐसा। देखिए कैसा है ना, शरणागति किसी पर हम लाद नहीं सकते। शरणागति कैन नॉट बी फोर्स्ड। शरणागति जो है, मेरी 30% है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि 30% है, या आपके 50% है, इसलिए किसी को आप ताना नहीं दे सकते। अरे क्या तुम 25-30 में ही लटक रहे हो, मैं देखो 50% हूँ। और आपको कोई 80% वाला बोले क्या 50 पे लटक रहे हो, मैं 80% हूँ, ये सब गलत है। क्योंकि शरणागति ये स्वाभाविक प्रगति है, वो धीरे धीरे होती है, और जब तक जितना स्वेच्छा से अपने आप स्वाभाविक रूप से होगी वो टिकेगी। अगर किसी को फोर्स करेंगे आप तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो। इसलिए शरणागति भी एक प्रक्रिया है। हाँ इच्छा तो है कि अभी के अभी 100% शरणागत हो जाऊँ, लेकिन किंतु वो शायद हो नहीं सकता है। क्योंकि हम इतने फंसे हुए हैं, तो प्रक्रिया में लगे रहो। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रक्रिया में लगे रहो। प्रक्रिया क्या है, जप करना है, चार नियम का पालन करना है, शास्त्र पढ़ना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, तुलसी पूजा करनी है, भागवत पढ़ना है, यात्रा में जाना है, बहुत सारे तरीके हैं, 64 तरीके हैं, उसमें लगे रहो। चाहे कुछ भी हो जाए लगे रहो। और समझो कोई किसी योगी वोगी के बाबा के पास गया ना, उसको कंडेम मत करो, उसको भक्ति के लिए एनकरेज करो। वो अपनी कमजोरी की वजह से विवश होकर कष्ट में पीड़ित होकर गया है मजबूरी में, तो उसको कंडेम मत करो। क्या तुम्हारी भक्ति देखो कैसे सफ़ेद और काली बालू मालूम पड़ा कि कहाँ हुए तुम, आज पता चला आप किस स्थिति में हो, योगी के पास जा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, उसका कुछ हद तक कुछ परसेंटेज में कृष्ण की शरणागति में रहना ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। 30% शरणागति कृष्ण की है ना, उसी को पकड़ो, उसको 31-32 बनाओ, उसको कंडेम करके 0 मत बनाओ। तो 30 का 0 हो जाएगा, वो योगी के पास ही रहेगा, उसकी पूरी शरणागति स्वीकार कर लेगा। इसलिए इस जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है। देखो हम अभी यहाँ पर बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, कल हमारे जीवन में कुछ भयंकर घटना हो गई तो हम क्या करेंगे हमको पता नहीं है। क्या करना चाहिए पता है, लेकिन क्या करेंगे उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि तो उस स्थिति में कौन सा संघ मिलेगा, क्या स्थिति होगी, क्या परीक्षा होगी, कहाँ जीतेंगे कहाँ हारेंगे पता नहीं है कुछ भी। इसलिए किसी को कंडेम मत करना। अगर कोई दिखता है आपको ऐसे करते हुए, ताकि उसकी पीठ थपथपाना, उसको एनकरेजमेंट देना, उसको उत्साह देना, उसको प्रेरणा देना, ले आना वापस, फिर जप में स्थिर करने का प्रयास करना, सेवा में लगाना, उसको प्रेम देना, उसको टिका मत करना, क्रिटिसाइज मत करना उसको, तो फिर वो धीरे धीरे 30 का 40। देखो हम लोग भी ना, समझो अभी 30% शरणागत है, कभी 0 थे, कितने साल लगे यहाँ तक आने के लिए। हम अगर इतना साल ले सकते हैं 30% आने के लिए, और उसको चाहते हैं कि मैं 50 हूँ तो तुम इंस्टेंटली 30 बनो, ये नहीं हो सकता है। जितना समय हमने लिया है आज की स्थिति तक आने के लिए, उतना समय दूसरों को भी दो। अच्छा है अगर वो फास्ट आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ पाएंगे कंडेम मत करो उनको, उनको एनकरेज करो, प्लीज़ कम। अरे प्रभुपाद जी अगर ऐसे होते ना तो कोई भक्ति नहीं बनता, कैसे लोग थे उनके सामने, सबको एनकरेज किया, सबको प्रेम दिया, सबको प्रेरणा दिया, सबके पीठ थपथपाई, और कहाँ से कहाँ ले आए उनको, कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग, क्योंकि प्रभुपाद बहुत संयमी थे, बहुत पेशेंस था उनके अंदर, बहुत प्रेम था उसके पहले, फिर संयमी थे, और सबको टॉलरेट करने की शक्ति थी उनके अंदर, और सब लोगों को धीरे धीरे करके, आज प्रभुपाद शरीर से नहीं रहे लेकिन वो सारे लोग दुनिया का पूरा प्रचार चला रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको बड़े से इत्मीनान से संयम से उनको प्रेरणा दिया था। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल, धन्यवाद।